नमस्ते दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं सोनो इंडिया के इस खास एपिसोड में। और आज के सब्जेक्ट है दंगा यानी राइट्स। और ये विवादित विषय में चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित किए हैं हमारे रामनिवास भैया को।
धन्यवाद सोनू। मैं रामनिवास सभी श्रोतागणों को प्रणाम करता हूं। आज हम इस विवादित विषय दंगा पे चर्चा करेंगे। ये क्या है, क्यों होता है और इसका समाधान क्या है?
हमारे लिसनर्स को बताइए कि ये दंगा क्या है। हर इंसान के जीवन काल में ये दंगा हर इंसान अनुभव करता है, ये तो बताइए ये क्या है?
दंगा एक तरह का मुठभेड़ है जो आपसी मतभेद से हो सकता है, सांप्रदायिक हो सकता है, लेकिन वास्तव यह है कि दंगा होता नहीं है, कराया जाता है।
अच्छा, तो ये दंगा कराया जाता है, तो ये कैसे कराया जाता है और कौन कराता है ये दंगा?
सबसे पहले जब हम लोग पुराने की बात करें, जब हम हिंदुओं में ही जब होता था, जो जाति बड़ा जाति छोटा जाति इस तरह से मतभेद आपस में था, उसमें दंगे नहीं, उसे हम मुठभेड़ कह सकते हैं। अपने आप को ऊंचा, कोई को छोटा दिखाने में आपस में एक मुठभेड़ हुआ करता था। वैसा मुस्लिम में भी होता था, शिया और सुन्नी के बीच में आपसी जो भी है, वो एक तरह का मुठभेड़ है, उसे दंगा नहीं कह सकते। दंगा का शुरुआत हुआ जब भारत में अंग्रेज लोग आए।
अच्छा, अंग्रेज आए।
वो लोग भारत में भारत में राज करने के लिए, भारतीयों में फूट डालने के लिए वो देखे कि किस में फूट डाला जा सकता है। अगर जाति जाति में डाला जाए तो एक छोटा होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए वो लोग देखे कि किस में फूट डालने से दंगा बड़ा होगा और हम राज कर सकते हैं। हाँ, हम आसानी से राज कर सकते हैं। तो वो लोग हिंदू और मुस्लिम को चुने जिनको आसानी से धर्म के आधार पर भड़काया जा सकता है, दंगा कराया जा सकता है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ हिंदू मुस्लिम के जो बड़े लीडर हुआ करते थे, मुस्लिम लीग वगैरह, और हिंदू के भी हिंदू के महासभा वगैरह जो भी उनके जो थे, उनको अपने बस में करके, उनको कुछ पैसा हुआ ये सब देके, उनसे लालच देके कुछ तरह से अपने बस में करके, और आपस में दंगा का आयोजित किए। हिंदू के मंदिर में गाय का मांस फेंकना, मस्जिद में सुअर मीट फेंकना, ताकि आपस में लड़ाई हो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना।
अच्छा,
हाँ, इतिहास से भी छेड़छाड़ किया गया, ताकि ये दिखाया गया कि इतिहास से छेड़छाड़ इसलिए किया गया ताकि लंबे समय में आदमी ये दंगा होता ही रहे।
अच्छा,
ठीक है, क्योंकि जो अभी छेड़छाड़ होगा, कुछ अभी हमारे बीच में बोलेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा कि हम जान रहे सच क्या है। अगर मेरा पीढ़ी गुजर जाने के बाद इतिहास पढ़ेंगे, दूसरे पीढ़ी, वो तो उससे देख के लड़ेंगे ना। इसलिए इतिहास में भी छेड़छाड़ किया गया कि उसे ये दंगा चलते रहे और मैं लंबा समय तक राज करते रहूं, ये उनका ये था। तो उन्होंने ये दिखाया गया कि भाई मुस्लिम हिंदुओं में ज़्यादा दमन करने लगे, फिर मुस्लिम हिंदू में आपस में एक अलग सा ये बनाया गया। हाँ, कि और ये दिखाया गया कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, इस तरह का अफवाहें फैलाया गया।
अच्छा,
ताकि आपस में इनका माने उलझे रहें और सही मुद्दे में ना आए कि भाई हमारे तरफ नज़र ना गिरना चाहिए कि मैं यहाँ का आपका शासक हूँ, ये करके जो हम यहाँ से आपको लूट के ले जा रहा हूँ, इस तरह से ना गिरे और आपस में आप लोग लड़ते रहो, इस तरह से एक आयोजित किया गया दंगों का जगह जगह में, ताकि आदमी उसमें ही उलझे रहे इस तरह से।
तो ये दंगा कराने वाले कोई बड़ा लीडर होते हैं जो कि हमेशा ये दंगा के नाम पे दो सांप्रदायिक या
वो अभी तक चलते आ रहा है वो दंगा। आजकल राजनेता ये करते हैं, पहले अंग्रेज करते थे, अंग्रेज तो चले गए, अब राजनेता आपस में ये दंगा कराते हैं। अभी तो बहुत जोर से चल रहा है कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, ये सब सुनने अचानक से मिलता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप हिंदू हैं, अपना पूजा पाठ सही से कर रहे हैं, अपने जो शास्त्र का अध्ययन माने जो रीति रिवाज है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो खतरे में कैसे हो सकता है? एक मुसलमान अगर 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है तो इस्लाम खतरे में कैसे हो सकता है? अगर कोई बोलता है खतरे में, तो आप तो पढ़ रहे हो, अपना नमाज कर रहे हो, अपना हिंदू धर्म का से रह रहे हो पूरे से, तो खतरे में हो कैसे सकता है? लेकिन उन्हें जबरन बनाया माना एक माहौल बनाया जाता है कि आप हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ताकि सही मुद्दे से भटकाया जा सके और आप आपस में लड़ते रहो और मुझे राजनीतिक लाभ मिलते रहे, ऐसा ही होता है दंगा। ये
तो ये दंगा कराने वाले कोई और होते हैं और उससे नुकसान पब्लिक का ही होता है जहाँ तक है।
पब्लिक का ही होता है, साथ ही साथ दंगा से होता क्या है, सरकारी जो भी हमारे हाँ जानमाल का नुकसान होता है, संपत्ति वो तो ज़्यादा सरकारी संपत्ति का बहुत ही नुकसान होता है। अभी एक चीज़ अच्छा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी दंगा ये सब हो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया है कि जो दंगा करते हैं उन्हीं से ही वसूला जाता है दंगे का जो नुकसान हुआ उसे संपत्ति, ये जो कि बहुत ही अच्छा, आने वाले समय में इसमें दंगा में प्रभाव पड़ेगा कि इसे अगर मैं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाऊँ तो कल को मुझे ही
उसको पे करना
पड़ेगा, भरना पड़ेगा, नुकसान करना पड़ेगा।
तो ये दंगा का मानसिकता कैसे बनाया जाता है लोगों के बीच, जो बड़े लीडर है वो कैसे लोगों को ऐसे भ्रमित कर देते हैं कि वो ऐसे दंगा करने में आगे बढ़ जाते हैं दोनों तरफ से।
ये ऐसा है कि दंग लोगों का अपने नेता के प्रति एक आस्था होता है, उस आस्था में आकर वो जो भी कहते हैं नेता उनके प्रति उन वो उसे सच मानते हैं ज़्यादातर केस में, उनके
हाँ
उनका एक उस आस्था का वो दुरुपयोग करके आपस में लोगों को जो आपस में लड़ाते हैं और इसका फायदा हो अपना राजनीतिक फायदा ही देखते हैं ज़्यादातर, उनको अपना राजनीतिक स्वार्थ से ही लाभ है, नहीं तो कोई भी कहीं भी क्यों किसी से लड़ने जाए किसी के भी नाम पर भी, उसे बिना बहकाए बिना ये किए कोई नहीं जाता, वो बहकाया जाता है या तो आजकल तो जैसे कश्मीर में दंगा कराए जाते थे वो पैसे से सबको माने सैनिकों पे, हमें भारतीय सैनिकों पे भारतीय सोल्जरों पे आरबीएसएफ के ऊपर में पत्थर फेंका जाता था दंगा कराने के लिए, वो क्यों है पाकिस्तान, हाँ जो पाकिस्तान से पैसा आता था और वो पैसा हर एक पत्थरबाजों को 500-500 रुपया मिलता था।
अच्छा।
इस तरह से और वो उनको पत्थर फेंकना है बस इतना ही, कहीं भी आतंकवादी आ गया उसको सपोर्ट करने के लिए उसको बचाने के लिए इस तरह से करते थे, जैसे एक माने एक जगह में आतंकवादी है वो सोल्जर को पता चल गया माने हमारा आर्मी को, वो आर्मी जाकर उसे घेर लिए तो उसके बचाव के लिए वो क्या करता था मोबाइल से एसएमएस कर देता था अपने लीडर को कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे सोल्जर घेर लिया।
अच्छा।
तो वो लीडर इनको व्हाट्सअप कर देंगे ताकि सभी आदमी जितने भी बच्चे जो भी हैं पत्थरबाज उनके सभी यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ उनके बचाव के लिए, सोल्जर के ऊपर में पत्थर फेंको, ये है इस तरह से दंगे कराए जाते थे।
आज का जमाना इंटरनेट जमाना है, कैसा लगता है कि कोई लीडर इंटरनेट के माध्यम से दंगा करवा सकता है क्या?
हाँ यही हो रहा है, ज़्यादातर यही हो रहा है, दंगा इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से हो रहा है। पहले एक जैसे अभी हुआ हाल ही में बेंगलोर की घटना, एक उसमें एक हुआ क्या है, एक कांग्रेसी नेता के भतीजे ने एक विवादित फेसबुक मैसेज किया जो कि मोहम्मद प्रोफेट के ऊपर में थे, तो एक घंटे के अंदर में 1000 से ज़्यादा मुसलमान इकट्ठा कैसे हो सकता है इंटरनेट के थ्रू से, उन्होंने इंटरनेट में देखा या उन्हें इंटरनेट में भड़काया गया कि ऐसे हो रहा है सभी आ जाओ ये फोन सारे एक घंटे के अंदर ही इकट्ठा हो गया, और फिर ये एक आयोजित था माने आयोजित क्या बोलते हैं उनको पहले से प्री प्लानिंग था कि हमें करना है करके इसी तरह से।
अच्छा अच्छा।
और ये दंगे को कैसे सुधारा जा सकता है या कैसे बंद किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है, दंगे से क्या मतलब, इतना नुकसान हो रहा है सभी जान रहे हैं लेकिन अब तक हम लोग ये डिस्कस नहीं करते हैं कि इसका एक्चुअली में सॉल्यूशन है क्या।
इसका समाधान एक हो सकता है राजनीतिक तरीके से कि इसके लिए एक कठोर कानून बनाया जाए ताकि और इसका पालन किया जाए, सख्ती से पालन करने से इसे रोका जा सकता है ताकि कोई भी भीड़ किसी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाया जा सके, अगर उसे मचाया तो उसके वो भीड़ को भी बड़ा से माने कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सके, अगर ये किया जाए तो भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
ये तो हुआ राजनीतिक उपाय, प्रशासन जितनी कड़ी कानून बना ले ये लोगों में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है जिससे दंगे को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके?
बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। उपाय है आध्यात्मिक उपाय, या कहें योग विज्ञान उपाय। इसे ये इस तरह है, जैसे हमारे शिक्षा प्रणाली में शिक्षा व्यवस्था जो है पूरे तर्क पर आधारित है, और हमारी शिक्षा प्रणाली में बुद्धि के विकास के लिए बल दिया जाता है, पहचान के विकास के लिए नहीं। सीमित पहचान के कारण ही ये सब होता है। हम अपनी पहचान को इस रूप में बना के रखे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं दलित हूँ, मैं फलना, मैं ढेकना। बुद्धि का काम होता है अपना पहचान को बनाए रखना, उसका अपने पहचान की रक्षा करना। आपका आप जिस पहचान के लिए आप अपने आप को बना के रखेंगे, अगर मैं खुद के बारे सोचूंगा मैं ही हूँ, तो मेरा बुद्धि सिर्फ मेरा ही रक्षा करने का सोचेगा। ये बुद्धि का काम है, बुद्धि ऐसे ही काम करता है। अगर मैं अपने परिवार के बारे में सोचूंगा कि मैं और मेरा परिवार तक हो सीमित, अगर मेरा पहचान, तो मेरा बुद्धि मेरा परिवार को ही उसके रक्षा के लिए उसका पालन पोषण कर ही सोचेगा, उससे ऊपर नहीं सोच पाएगा, क्योंकि मेरा पहचान उतना ही सीमित है। अगर मैं अपने समाज तक सीमित कर लूँ अपना पहचान को, तो मेरे समाज तक ही मैं सोचूंगा, समाज के लिए मैं लड़ लूँगा अगर कुछ भी है। जैसे मेरे परिवार पे अगर तक मैं सीमित रखा हूँ अपना पहचान, अगर परिवार पे कुछ भी आंचा है तो मैं उसके लिए लड़ लूँगा। अगर मैं अपना पहचान धर्म तक सीमित रखा हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो अगर कोई मेरे धर्म पे अंगली उठाए या उसके लिए कुछ बोले, तो मैं उससे लड़ लूँगा। उसके लिए मैं कुछ किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा बुद्धि उसी तरह काम करेगा। पुरातन काल में क्या होता था, पहले पहचान विकसित किया जाता था। पहला उनका जब उपनयन संस्कार होने के बाद उनका पहला पढ़ाई होता था, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मांड हूँ। पहचान ब्रह्मांड स्तरीय, जिससे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए इतना आपका बुद्धि जो भी है ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए ही हो सकता है। आप आपस में नहीं देख सकते। अगर आप कोई बोलते हैं जैसे वो ब्रह्मज्ञानी है, तो उस ऐसा आदमी अगर आप मिलता है तो वो सभी में एक जैसा देखेगा, जो मैं हूँ वही तुम हो, उसमें कोई भेदभाव ही नहीं रहता है। अगर आप पहचान जैसे परिवार में आप बना के रखे कि मेरा परिवार है, तो आपका परिवार में अगर कुछ भी छोटा कुछ भी बात होता है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पहचान खुद में बना के रखे हो मेरे में, तो आप परिवार में ही आपस में लड़ लोगे, दो भाई में ही, दो बहन में। ये स्वाभाविक है, क्योंकि बुद्धि ऐसे ही काम करता है,
पहचान को बचाने का काम।
तो पुरातन काल में पहले पहचान को विकसित किया जाता था ब्रह्मांड स्तरीय में, उनको ये बोध कराया जाता था कि आप ही ब्रह्मांड हैं, और उसका उनका उस तरह से पढ़ाई होता था। उसके बाद फिर बुद्धि को विकसित किया जाता था। बिना बुद्धि पहचान को विकसित किए अगर बुद्धि को विकसित करेंगे, तो उससे सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होगा। जैसे कि अगर मेरा पहचान मैं ही तकसीमित रखा हूँ, और मेरा बुद्धि बहुत तेज है, मैं उसको पहचान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर कोई आए तो मैं अपना बुद्धि बल से उसको तो विनाश भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बुद्धि बहुत तेज है, अपने पहचान को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक उसको ये कर सकता हूँ। अगर आपका बुद्धि तेज है, तो आपका पहचान भी बड़ी होना आवश्यक है। अगर आप पहचान भारतीय तक रखेंगे, तो आप भारत में आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, कोई दंगा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी में एक ही जैसा देखेंगे। आप ब्रह्मांड स्तरीय रखेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड में आपसे किसी से बैर नहीं होगा, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं आपको कुछ फर्क नहीं, सभी तो अपना ही है, आपको ऐसा लगेगा। ये है पहचान। पुरातन काल में इस तरह से पहचान बनाया जाता था, और ये पहचान जो है वो इस पे आधारित है, आपका याददाश्त पे। याददाश्त बहुत मायने रखता है पहचान को बल देने के लिए। अगर याद आपका आप जितना भी बुद्धिमान हो, अगर आपका याददाश्त हटा दिया जाए, तो आप एक मूर्ख लगेंगे टोटली। वैसे ही तो ऐसा भी चल रहा है कि आप आजकल में शिक्षा जो है बुद्धि को तेज किया जाए। बुद्धि इस तरह का है, तो चाकू समझ लीजिए, बुद्धि है चाकू, जो उसे आपको चाकू कैसे चाहिए, तेज चाहिए, तो बुद्धि तेज होना ही चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि फर्क करता है कि आप चीज़ों में फ़र्क करने का आपको काबिलियत देता है कि आप उसको कर सकते हैं। दो चीज़ को बांटना काटना ये बुद्धि का काम है।
पहचान गलत क्या सही
वो बुद्धि ही अपने तर्क द्वारा सिद्ध कर सकता है। और पहचान है वो हाथ, ठीक है, तो हाथ स्थिर होना चाहिए। बुद्धि आपका चाकू है, उससे हाँ उससे विनाश भी हो सकता है और विकास भी हो सकता है, ठीक है। और हाथ है वो पहचान आपका स्थिर, वो आप विकास करेगा या विनाश करेगा इसका आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप पहचान क्या बना के रखें उस पर निर्भर करता है। अगर आप पहचान खुद में मैं पे रखेंगे तो आप अपने ही ये करेंगे, बाकी का तो विनाश ही कर देंगे। ये है। और याददाश्त इन दोनों को मजबूत बनाता है। ये है मन, इस तरह से काम करता है। और इस तो हमारे पुरातन जो शिक्षा प्रणाली था उसमें इन सब चीज़ों को विकसित किया जाता था, सभी को बराबर, जितना बुद्धि बढ़ा उतना पहचान बढ़ा, उतना ही आपका याददाश्त भी के लिए भी तेज किया जाता था सबके लिए, सभी को। बुद्धि माने मन का जो होते हैं, बुद्धि का चार भाग होते हैं ऐसे, बुद्धि पहला, बुद्धि दूसरा अहंकार कहा जाता है जिसको पहचान कहते हैं, अहंकार युगो नहीं, और तीसरा हो गया मनस्क यानी वहाँ पे याददाश्त, और चौथा होता है चित्त। चित्त के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले इन सबको बुद्धि को तेज किया जाता था, तो पहचान भी मजबूत होना चाहिए और याददाश्त भी बहुत अच्छा। अगर आप पहचान जितना ऊंचा रखेंगे तो आपस में मतभेद नहीं होगा। ये है। तो आजकल की प्रणाली सिर्फ तर्क पे ध्यान दिया जाता है, पहचान पे नहीं, इसीलिए सब मैं, मेरा परिवार, मेरा देश या मेरा धर्म, मेरा जाति में सीमित है, इसलिए आपस में लड़ते हैं, जो मेन कारण ये है। अगर आप पहचान पे अगर बल दे के शिक्षा दी जाए तो काफ़ी हद तक इसमें पाया जा सकता है, क्या होता है, सफलता हो सकता है और उसमें रोकथाम लगाया जा सकता है।
बहुत बहुत ही अच्छा ज्ञान दिए हमें, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर था, और ये ज्ञान हमारे दर्शकों को ज़रूर समझ में आई होगी। और हम आशा करते हैं कि ये दंगा जो बहुत ही ख़राब चीज़ है, जो कि कभी ना हो, जितना कम हो समाज उतना सुखी रहेगा।
सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर इधर से भी हम कर लेते हैं, पहचान पर भी थोड़ा विकसित करते हैं, तो काफ़ी हद तक हम, कम से कम हमें सोचना चाहिए कि राष्ट्रीयता तक होना चाहिए, भारत तक पहचान सभी भारतीयों को होना चाहिए, कम से कम भारत के अंदर तो आपस में ना लड़े। उतना बड़ा पहचान ब्रह्मांड ये पहचान करना आज का युग में शायद संभव ना हो, क्योंकि
उतना राष्ट्रीय स्तर
पर क्या जा सकता है जिससे हम अपने देश का विकसित तो कर विकास कर ही सकते हैं।
तो दोस्तों, शिक्षा प्रणाली बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारी सोसाइटी विकास के लिए, विनाश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस एपिसोड में अंत तक बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द एक नया एपिसोड लेके आपके पास आऊँगा, तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए।